मिस्ट्रीज अनफोल्ड। इस सेगमेंट को सुनने के बाद आप वाकई ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुदरत ने इस कायनात में कितने ही राज हमारी नजरों से पोशीदा रखे हैं। इस दफा की मिस्ट्री है बरमूडा ट्रायंगल। आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा और कुछ लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं वो मजीद जानने की ख्वाहिश रखते हैं और जो नहीं जानते वो जरूर जान जाएंगे। मिस्ट्रीज अनफोल्ड बाय नायला फ्रॉम लाहौर।
बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा पुरेसरार खबर जो इंसानी जिंदगियों, बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को देखते ही देखते निगल जाता है। इनमें से अक्सर कभी न मिल सके और अपनी कब्रों के निशान समुंदर की लहरों पर छोड़ गए। और बाज़ वाक़यात और हालात ने तो इसे UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और एलियंस की डरावनी कहानियों से भी मंसूब कर दिया। आइए हम अपने सफर का आगाज करें और जानें कि बरमूडा ट्रायंगल की असल हकीकत क्या है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला अटलांटिक ओशन का यह हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ के मौसमी हालात बहरी और हवाई जहाजों की परवाज को मुश्किल में मुब्तला कर देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का एक तूफानी बहाव अपने अंदर 10,000 न्यूक्लियर बमों से ज्यादा ताकत रखता है। लहरों की बुलंदी 50 मीटर यानी 5 मंजिला इमारत तक पहुँच जाती है। हवाओं की रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। वर्ष ये समुद्री तूफान अपने रास्ते में आने वाले तमाम जहाज़ों को निगल जाता है और कोई निशान बाकी नहीं छोड़ता, ना ही कोई सर्वाइवर जो अपनी तबाही की दास्तान किसी को सुना सके। 1918 में एक सप्लाई जहाज USS साइक्लोस अपने सफर को रवाना हुआ। कुछ ही देर में उसके साथ तमाम रबते मुनकता हो गए। ऐसा क्यों हुआ ये आज तक कोई न जान पाया। 1963 में सेल्फा कोइन नामी एक मरीन अपने रूटीन दौरे पर थी। वो भी अपने उसी अंजाम को पहुंची और उसके बारे में भी कोई सुराग न लगा पाया। साइंसदान बरमूडा ट्रायंगल के बारे में मशहूर इन दास्तानों को नहीं मानते और शायद वो किसी हद तक ठीक ही कहते हैं, लेकिन आखिर बरमूडा ट्रायंगल से मंसूब इन दास्तानों का आगाज हुआ कहाँ से? दूसरी जंग अजीम की खौफनाक तबाही और तनाजात के बाद एक नए दौर का आगाज हुआ। बाज लोगों ने फिल्में बनाकर इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कुछ ने किताबें लिख डाली। गर्ज इस दौर ने लोगों की सोच को बिल्कुल ही बदल डाला। ये वो दौर था जब USA की सरजमीन पर एलियंस और UFO की डरावनी कहानियों ने जन्म लिया और इस ख्याल ने लोगों के जहनों में तकवीयत पकड़ ली कि हाँ, कोई मखलूक है जो दुनिया पर इंसानों की खोज में है। और इन मिथ्स ने रफ्ता रफ्ता लोगों में खासी मकबूलियत हासिल कर ली कि इन जहाज़ों की गुमशुदगी का असल सबब भी हमारी ज़मीन पर एलियंस ही की मौजूदगी है। 1960 के दरमियानी अशरे में ओडिसी मैगजीन के मुसन्निफ ने इन वाक़यात और हालात को बरमूडा ट्रायंगल से मंसूब करके उसकी पुरेसरारियत में और भी इजाफा कर दिया। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है, साइंसदान, माहिरीन फलकियात, मुहक्किकीन और ऐनी शाहिदीन सब अपनी अपनी जगह अपने तजियात पेश करते हैं। साइंसदान बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई हकायक पेश करते हैं, जिनमें से अक्सर का इन्हिसार उस इलाके में मौजूद मौसमी कैफियत पर है। दुनिया में होने वाले बहरी और हवाई हादसात का ताल्लुक भी ज्यादातर उस वक्त के मौसमी हालात पर होता है। और बरमूडा ट्रायंगल दुनिया से हटकर तो कोई इलाका है नहीं, बल्कि इसका शुमार तो दुनिया के उन गिने चुने इलाकों में होता है जहाँ शदीद तरीन मौसमी हालात पाए जाते हैं। सबसे पहला और यकीनी तसव्वुर समुद्री तूफानों का है। इन समुद्री तूफानों में मौजूद तेज रफ्तार हवाओं का मुकाबला करने का हौसला शायद ही किसी जानदार में मौजूद हो। ये तेज रफ्तार हवाएं तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब एक जगह से दूसरी जगह अपना रुख मोड़ती हैं तो पीछे एक दिल दहला देने वाला अंजाम छोड़ जाती हैं। अगर इन्हें मौत की दूसरी शक्ल कहा जाए तो बिल्कुल बेजाना होगा। मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर में अनगिनत साइंसदान रोजाना इन्हीं तूफानों की शिद्दत और सिर्फ का तफसीली जायजा लेते हैं, लेकिन कुदरत कई दफा इंसानी अक्ल को बिल्कुल हैरान कर देती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी हमारी इजादात बहुत नाकाफी हैं। इसकी जिंदा मिसाल 1992 का तूफान है, जब इसके बारे में कोई शख्स भी अंदाजा न लगा पाया कि ये अपनी सिमत और शिद्दत में किस हद तक बदलाव पैदा कर देगा। इन तूफानों का हम जितना ही मुताला करते हैं उतना ही हमें बरमूडा ट्रायंगल के राज को जानने का मौका मिलता है। इंसान की अकल कंप्यूटर और सैटेलाइट जैसी इजादात से फायदा उठाते हुए इन तूफानों की इब्तदा फॉर्मेशन और शिद्दत का बखूबी अंदाजा लगा सकती है, लेकिन महज समुद्री तूफान ही बरमूडा ट्रायंगल के तमाम राज अफशा नहीं कर सकते, क्योंकि इन तूफानों की मुद्दत तकरीबन 6 माह है, यानी जून से नवंबर तक। यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। अक्सर जहाजों की गुमशुदगी के वाकयात इस अरसे के बाद रोनुमा हुए। दूसरी जंग अजीम के अख्तिताम पर 5 US नेवल एयरक्राफ्ट 14 एयरमैन के साथ बगैर किसी सुराग के लापता हो गए। ऐसे ही वाकयात ने बरमूडा ट्रायंगल से वाबस्ता इन दास्तानों को मजीद तकवीत दे दी, और फ्लाइट 19 के हादसे ने तो लोगों की इस इमेजिनेशन को इंतहा तक पहुंचा दिया, जिसमें मौजूद मुसाफिर कभी अपने सफर से लौट न सके। फ्लाइट 19 के हादसे ने बरमूडा ट्रायंगल की मिथ को इंटरनेशनल अटेंशन दे दी, और साथ ही इंसानी अकल इस बात को समझने से भी कासिर रही कि आखिर फ्लाइट 19 का मलबा क्यों न मिल सका। ना ही कोई लाइफ जैकेट, ना डेड बॉडी, किसी को भी इस हादसे की असल वजह मालूम न हो सकी। December 27, 1948 में एक DC-3 बगैर कोई सुराग छोड़े इन्हीं फिजाओं में गुम हो गया। इसी तरह August 28, 1963 में 2 मिलिट्री एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन्स अपने बेस की तरफ लौटते हुए लापता हो गए। ये पिछले जहाजों की तरह कहीं गायब तो न हुए, और इनका मलबा भी मिल गया। लेकिन हैरान कन बात ये रही कि कोई इसकी भी तबाही की वजह मालूम न कर सका। ये किसकी गलती थी, पायलट की या इंजन फेलियर? अब हम बरमूडा ट्रायंगल को एक और पहलू से देखते हैं, और इन जहाजों के हादसात की वजह इंजन फेलियर या इंसानी जहन की गलतियों को ठहराते हैं। पर ऐसा ऐन मुमकिन है। समुद्र के ऊपर जहाज उड़ाते हुए बाज़ औकात पायलट के लिए इस बात का अंदाजा लगाना कदरे मुश्किल हो जाता है कि उसके जहाज का रुख किस जानिब है, ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं। इस कंफ्यूजन की बुनियादी वजह सतह समुद्र से रोशनी का रिफ्लेक्शन है, जो इस जगह के लिए बहुत आम सी बात है। इस रिफ्लेक्शन की वजह से आसमान और समुद्र की सतह बिल्कुल यकसा दिखाई देते हैं, और अगर धुंध हो जाए तो ये हालत को मजीद बदतर बना सकती है। ऐसे में पायलट अगर अपनी ओरिएंटेशन खो बैठे तो बहुत मुमकिन है कि जहाज सीधा समुंदर में जा गिरे। लेकिन क्या यही स्टेटमेंट हम समुद्री जहाजों के लिए भी मुख्तस कर सकते हैं, या उन जहाजों के हादसात की वजह भी इंसानी गलतियां ही ठहरी? मौसमी साइंसदान इस बात को काफी हद तक तस्लीम करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की वजह इंसानी गलतियां, डिसओरिएंटेशन और मैकेनिकल फेलियर हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो वो अपनी गलतियों का सेहरा बेचारे एलियंस और UFO के सर बांध देते हैं। वर्थ बरमूडा ट्रायंगल के पुरसरार हादसात को हम इंसानी गलतियों, बदतरीन मौसम और मैकेनिकल फेलियर की वजह करार दे सकते हैं, और बाज़ोकात इन तीनों का मिलाप। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक और गैर मामूली कहानी का पता हमें ब्रूस गार्नन से चलता है, जो कि एक रूटीन मियामी फ्लाइट पर सफर कर रहे थे। अपने सफर के दौरान उन्हें एक बादल का टुकड़ा नजर आया। इसमें दाखिल होते हुए इन्हें एहसास हुआ कि इस बादल के टुकड़े ने सुरंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस सुरंग में उन्हें हर तरफ रोशनियां चमकती दिखाई दी। ऐसा मालूम होता था कि ये बादल का टुकड़ा एक अजीब सी तवानाई से चार्ज हो चुका हो। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि इस सुरंग के अंदर उन्हें अजीब सी रोशनी की लकीरें उभरती नजर आईं, जो आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी। उनके अंदाजे के मुताबिक ये अजीब सी तवानाइयां और रोशनियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हैं। एक और अजीब बात ये रही कि उनके ख्याल के मुताबिक सुरंग की लंबाई तकरीबन 15 किलोमीटर थी, और उनके सफर का दौरान यह तकरीबन 1 घंटे का हो चुका था। लेकिन ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि उनकी घड़ियां उनको सफर का वक्त सिर्फ 33 मिनट बता रही थी। कुछ और लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की, लेकिन वो साइंटिफिकली इसका कोई भी सबूत पेश न कर सके। इन तमाम मुशाहिदात, तज्जियात और वजूहात को सामने रखते हुए कई सवाल इंसानी जहन में पैदा होते हैं, और इंसानी जहन काफ़ी हद तक इन सवालों का जवाब भी दे सकता है। जैसा कि फ्लाइट 19 के हादसे को ह्यूमन एरर कहा जा सकता है, और वो शिप्स जो लापता हो गए वो समुद्री तूफानों की नज़र हो सकते हैं, और एक ख्याल के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मफूजे को भी सही माना जा सकता है। और इस हकीकत का इनकार करना भी मुमकिन नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक फील्ड बतदरीज कम से कम तर होती चली जा रही है। हमारी इस तमाम रिसर्च के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल की पुरसरारियत के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये आज भी अपने अंदर कई कहानियों को छुपाए चुपचाप अपने अहाते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, और फिर एक खामोश तमाशाई की तरह अपने नए शिकार का इंतजार करने लगता है।